الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق کے لیے تیار ہوں گے. قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ہمیں اس سے زیادہ تیار ہونا چاہیے جتنا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم نہا دھو کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، کنگھی کر کے اور پھر بیٹھیں. یعنی وضو بھی ہو گیا، آپ کے طہارت بھی ہو گئی، آپ کے کپڑے بھی اور آپ کے بال بھی سیدھے ہو گئے، تب بیٹھیں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فوکس میں، آپ کی کانسنٹریشن میں بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، تو بستر سے اٹھ کے نہیں بیٹھ جائیں کلاس کے لیے. کبھی بھی ہم ایسے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. تو اللہ کا قرآن اس سے زیادہ ادب کا مستحق ہے. ٹھیک ہے، جتنی کہ دوسری جگہ ادب کی مستحق ہیں، وہ بھی تعلیم ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ اس چیز کے لائق ہے کہ ہم اس کو عزت دیں، ادب کریں اس کا. اور ادب میں یہ شامل ہے کہ ہم جس حالت میں اس کو پڑھ رہے ہیں وہ بہترین ہماری حالت ہو. صحیح، انشاءاللہ تعالی. دیکھتے ہیں تفسیر سورۃ النحل آیت نمبر 96 سے 113 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، ینفدو، فنا ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. اس کو اگر پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے تو معنی کیا بنتا ہے کہ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنی قسموں کو پورا کریں، اپنے عہدوں کو پورا کریں، چاہے اس کے اندر نقصان ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ کافر جب دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے عہد توڑ دیا ہے یا وعدے کا خلاف کیا ہے تو وہ کبھی آپ کے دین پر اعتماد نہیں کریں گے. جیسے آج ہوتا ہے، وہ اسلام کو قبول کرنے سے رک جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے عمل کو دیکھیں گے. وہ دیکھیں گے کہ ان کی تو کوئی یعنی زبان ہی نہیں ہے، یہ وعدے کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اور اس کے بعد نبھاتے ہی نہیں. تو یہ ایک بہت غلط ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ اپنے دین کو. پھر جو وعدہ کریں، جو عہد و پیمان کریں، جو ایگریمنٹس کریں، جو آپ دوسرے کے ساتھ ڈیل کریں، ڈیل بناتے ہیں نا آپ، ڈیل بنا لی آپ نے، ڈیل پکی کر لی، اس کے بعد اس کو پھر توڑے نہیں، اس سے پھرے نہیں. اور انسان کیوں اس سے پھرتا ہے، کیوں توڑتا ہے ایسی ڈیلز کو، کیوں پھر جاتا ہے اپنے وعدوں سے یا جو انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہوتے ہیں اس سے پھر کیوں جاتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ دنیا کا لالچ. اس کو لگتا ہے کہ مجھے نقصان تو نہ ہو جائے گا، یا میرا مجھے پروفٹ کم ملے گا، یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، کہیں اور ڈیل بنا لیتا ہوں. یہاں پہ تو میں نے جو بنائی تھی اس وقت، مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے اتنا نہیں پروفٹ ہونا، میں تو وہاں پہ ان کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہوں، کسی اور کے ساتھ کر لیتا ہوں. یا وہ دوسرے کو دیکھتا ہے کہ یہ اب مجبور ہو گیا تو اس کو ذرا اور بھی اپنا پروفٹ بنانے کے لیے تھوڑا اس کو یعنی اس پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ ورنہ تو میں ڈیل توڑ دوں گا. اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کے پیچھے موٹیو کیا ہوتا ہے، دنیا کا لالچ. تو یہاں پہ اس سے ساتھ کنیکٹ کر کے پچھلی آیت کے ساتھ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دنیا بھی حاصل ہو جائے نا تمہیں تو وہ ساری ختم ہو جانی ہے. یہ دنیا جو ہے ٹیمپریری ہے، और अल्लाह ताला के पास जो है वो बाकी है, वो परमानेंट है। पूरी दुनिया भी मिल जाए तो उससे ज्यादा बेहतर है वो जो अल्लाह के पास है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो पिछली आयत के साथ जब आप जोड़ के इसको देते हैं, देखते हैं, तो आपको ये समझाया जा रहा है कि जो आपके पास है वो फना होने वाला है, चाहे आपको अरबों खरबों मिल जाए, चाहे आपको कोई कुर्सी मिल जाए, चाहे आपको कोई ओहदा मिल जाए, आप उसकी वजह से अपने मोहदे को, अपने एग्रीमेंट्स को तोड़े नहीं, किसी भी दुनिया के फायदे के लिए। इसलिए कि दुनिया का फायदा जितना भी मिल जाएगा वो थोड़ा ही है और वो फना होने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। और अल्लाह ताला के पास जो चीज है ना, जो अजर है इसका, इस वादे को पूरा करने का, इसको निभाने का, वो बाकी रहने वाला है। तो जाहिरी फायदे को मत देखना, जो अल्लाह के पास है उसको देखना। बात समझ आ गई? और अगर सिर्फ इतनी बात के ऊपर ही हम अमल कर लेना, तो दुनिया के अंदर आज मुसलमान ट्रस्ट वर्दी हो जाए, हर एक हमारे जुबान पे यकीन करने लगे। लेकिन आज इसका बिल्कुल उलट है, इसलिए कि हम खुद भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। मैं पता है जब हम मुसलमान से डील करेंगे तो वो अपनी जुबान से फिर जाएगा, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसलिए कि मुसलमान ने अपने कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह ताला की दीवी तालीम को छोड़ दिया, उसकी हिदायत को पसे पुश डाल दिया, बिल्कुल जैसे यहूद ने किया था। वो अपनी किताब को पढ़ते तो थे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्होंने पसे पुश डाल दिया। और यही है पसे पुश डालना, कि जो कहा जा रहा है उसके ऊपर अमल हमारा जीरो हो चुका। आज हम दुनिया में इससे मशहूर हो चुके हैं कि ये बेईमान हैं, इनकी जुबान के ऊपर कोई भरोसा नहीं, ये तो अपने वादों से फिर जाने वाले हैं, ये तो कोई डील निभाते नहीं है, एग्रीमेंट निभाते नहीं। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इसकी वजह से हमारे दीन की रिप्रेजेंटेशन दुनिया में, हमारे अमल की वजह से, हमारे किरदार की वजह से मिस रिप्रेजेंट हो रहा है। हालांकि हमारा दीन कितना खूबसूरत है जो ये तालीम देता है कि तुम्हें नुकसान भी हो जाए ना तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हें मिल भी जाता था उसने भी तो खत्म हो जाना था। अगर तुम्हें लाखों भी मिल जाते इस डील को करने से, इसके इसको मायदे को तोड़ने से तुम्हें लाखों भी मिल जाते तो भी क्या फर्क पड़ना था, वो भी तो खत्म हो जाना था। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखने के अलावा, अगर इसको अमूमी तौर पे इस हिस्से को आयत के आप देखें और इस पे गौर करें, तो वाकई इंसान सोचे जो भी चीज है इस दुनिया में वाकई वो फना हो जाने वाली। कुल्लु मन अलैहा फान, ये हमने पढ़ते हैं ना सूरह रहमान में, कुल्लु मन अलैहा फान, जो कुछ भी यहाँ पे है वो फना हो जाने, चाहे वो मेरी अपनी हस्ती है, मेरे पास जो माल है, मेरे पास जो जायदादें हैं, मेरे पास जो भी चीजें हैं, सब खत्म हो जाने वाली। जबकि इंसान क्यों इनके पीछे भागता है कि उसको लगता है कि ये बाकी रहने वाली, मैं भी बाकी रहने वाला हूं और ये चीजें भी। इसी वजह से कत्लो गारत होते हैं, दुश्मनियां होती हैं, मुखालफतें होती हैं, एक दूसरे से मुंह फेरते हैं। इसी वजह से ये लालच है, इसी वजह से लूट खसूट है, इसी वजह से हराम कमाइयां हैं। इन सब के पीछे क्यों, क्या क्या आपको रीजन नजर आती है? इसी वजह से झूठ है, धोखा है, कि इंसान का ये कॉन्सेप्ट खराब हो गया, उसको इस बात पे यकीन नहीं है कि मा इंदकुम यनफदु। कुरान की आयत के इस हिस्से पे उसको पता तो है, यकीन नहीं है, यकीन दिल में बैठा नहीं है, और हम सब के अंदर नहीं बैठा हुआ। इसलिए आपने देखा एक एक किसी, सुभान अल्लाह, किसी ब्रांड का कोई कोई पता नहीं लॉन्च हुआ कोई ब्रांड, तो उसकी वीडियो सामने आई कि औरतें एक दूसरे के बाल नोच रही हैं और ऐसे भागी जा रही हैं, वो कपड़ा ऐसे उठा रही हैं और उसके अंदर धक्कम बेल है और एक हंगामा मचा हुआ है। हैरत हुई कि मा इंदकुम यनफदु, ये नहीं पता, ये कपड़ा भी पुराना हो जाएगा, ये जिंदगी पुरानी हो रही है, ये जवानी पुरानी हो रही है, ये हर चीज जो हमारे पास है इसने फना होना है, ये फना की तरफ जा रही है। हर दिन जो हमारा बढ़ रहा है ना, हर डेट जो चेंज हो रही है, ये हमें फना की तरफ लेके जा रही है, बका की तरफ नहीं लेके जा रही। फिर भी हम कैसे लालच में पड़े हैं, कैसे हम दूसरे को पीछे करके खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे ये मुकाबलेबाजियां हो रही हैं, कहीं हुसन के मुकाबले, कहीं कुव्वत के मुकाबले, कहीं माल के मुकाबले, कहीं जायदादों के मुकाबले, कहीं अपनी औलादों के स्टेटस के मुकाबले, कहीं करियर्स के मुकाबले, जबकि सब कुछ ही तो खत्म हो जाना है, फना है जो कुछ तुम्हारे पास है। यकीन क्यों नहीं आता? तो शैतान कहता है नहीं, तू भी बाकी और सारी चीजें भी बाकी रहनी। एक दिन भी वाकई इस पे यकीन आ जाए ना, तो हमारी जिंदगियां बदल जाएं। बिलीव मी, हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, खत्म हो जाना। आप हम्बल हो जाएंगे जिस दिन ये यकीन आ गया। हम कहते हैं लेकिन हमें यकीन नहीं। यकीन आएगा कैसे? कैसे यकीन आएगा बताइए, खुद ही कहीं से उतर के आ जाएगा। यकीन आएगा ऐसे कि हम बार बार इन चीजों को दोहराएं, इसीलिए हम कुरान की मजलिसों में बैठते हैं, इसीलिए हम जिक्र की मजलिसों में बैठते हैं, इसीलिए हम ऐसे साथी ढूंढें जो हमें ये बातें बार बार याद दिलाएं कि मां इंदकुम यम फतु। ठीक है, और जब हम इन मजलिसों से दूर हो जाते हैं, ऐसे साथियों से दूर हो जाते हैं, ऐसी कंपनी में नहीं रहते, ऐसी जगह नहीं बैठते, अल्लाह के जिक्र से, उसके कुरान से दूर होते हैं, तब हमें ये यकीन दिलाता है शैतान कि सब कुछ बाकी रहना है जो तेरे पास है ना। माइंदा कुम बाक, हालांकि अल्लाह तआला ने फरमाया माइंदल्ला ही बाक, अल्लाह के पास जो है वो बाकी रहने वाला है। शैतान कहता है तेरे पास बाकी रहना है। और इंसान फिर ऐसे ही जिंदगी गुजारता है जैसे वो हमेशा के लिए यहीं पे रहने आया, जैसे हमेशा के लिए उसके पास माल है, हमेशा के लिए उसके पास जवानी है, हमेशा के लिए उसके पास वक्त है। इसीलिए तो कोई इंसान कहता है कर लेंगे जी, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे। इसीलिए इंसान वो काम करता है ये भूल के कि मौत उसके आगे खड़ी भी है। वो शादियां कर रहा होता है, उसको पता नहीं होता कि चंद महीने बाद वो कहीं मुर्दा पड़ा होगा, उसको नहीं पता होता। वो खुशियां मना रहा होता है, वो आपे से बाहर हो रहा होता है, वो नाफरमानियां कर रहा होता है, वो गुनाहों में पड़ा होता है, क्योंकि वो भूल चुका होता है कि मानदा कुमियन पादू। इंसान ये भूल के फिर जब जिंदगी गुजारता है तो वो गफलत वाली जिंदगी है। इसीलिए कुरान की तरफ बुलाया जाता है कि कभी भूल भी जाए ना इंसान, फिर वापस आओ, फिर वापस आओ, फिर पलट के बैठो। और बाज लोग समझते हैं एक दफा कुरान पढ़ लिया अब काफी है। क्या आपको रिमाइंडर नहीं चाहिए? क्या याद रहता है ये? इतनी दफा भी हम पढ़ लेते ना फिर भूल जाता है कि मा आइंदा को मियन फतो। फिर हम सबको रिमाइंडर की जरूरत होती है, एकदम आंखें खुल जाती, हाय वाकई, एकदम जैसे होश आ जाता है, एकदम जैसे कोई झंझोड़ देता है कि हाँ वाकई। फिर कुछ दिन ये असर रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर हमें रिमाइंडर चाहिए। तो क्या करें इसके लिए? फिर कैसे यकीन बैठेगा? जुड़ जाए इसके साथ, इसको अपनी जिंदगी से जाने ना दे, इस रस्सी को मजबूती से थाम ले, क्योंकि भूलेगा। जो पढ़ रहे हैं ना उनको भी भूलेगा। देखिए एक हफ्ते में ही हम भूल जाते हैं, फिर जहन से महव होने लगता है, फिर दुनिया छाने लगती है, फिर लगने लगता है बस यहीं के मजे हैं। तो भूल जाता है हमें ये सबक। इसको याद रखने के लिए जरूरी है कि हम बार बार इसकी दोहराई करें, बार बार इसको अपने आप को रिमाइंड कराएं, हमारे साथी भी हमें रिमाइंड कराएं, हम इस क्लास में बैठें ताकि हमें ये हमारी धुलाई होती रहे दिलों की, हम कुरान के सबक को दोहराते रहें इमा इंदकुम यनफतु, ताकि हमारी जिंदगी सीधी रहे, हम सीधे होके रहें तीर की तरह, टेढ़े ना हो। यकीन करें जब हम ये भूल जाते हैं हमारी जिंदगी फिर टेढ़ी होने लगती है, फिर कहीं गुम हो जाते हैं। तो जितना कुछ है जिससे दिल चिपकता है ना जाके, वो क्या क्या चीजें हैं जो क्या? अच्छा पहले ये बताएं माँ आइंदा कुम में क्या आता है? जो तुम्हारे पास है, क्या आता है इसमें? लिखें जरा, लिखें सारी चीजें, लिखें जो कुछ आपके पास है, क्या क्या है आपके पास? जिंदगी है, वक्त है, औलाद है, घर है, बिजनेस है, मालो दौलत है, बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी है लिख डालें उसको एक पेपर पे, और उसके बाद सारे को क्रॉस करके कहें ये सब खत्म हो जाने वाला है, ताकि यकीन दिल में आए, क्योंकि ये बात रब की है, ये बात किसी और की कहीं भी नहीं है। फिर देखिए इनमें से कौन सी चीजें हैं जिनके पीछे मैं घुल रही हूं, जिनके पीछे मैंने अपने आप को लगा लिया है, अपने आप को खपा रही हूं, जिनके पीछे मैं भाग रही हूं, है ये सब खत्म हो जाने वाला है? वाकई हम देखें दुनिया के मामले में इतने सियाने हैं, हम वो कपड़ा भी नहीं खरीदते जिसका कल एक धो के बाद जिसका रंग उड़ जाएगा, जो बोसीदा हो जाएगा, हम वो कपड़ा लेते हैं जो देर पाओ, कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग हो, कहते हैं ड्यूरेबल चीज लो। हम कोई भी चीज बाजार से देखने जाते हैं तो चाहे महंगे दामों बिक रही हो, और हम कहते हैं नहीं ये वाली चीज ले लो, वरना दूसरी ये सस्ती वाली ली तो घर में एक दफा इस्तेमाल के बाद खराब हो जाएगी। कितना सोचते हैं ना हम वहां पे घर नहीं बनाते जहां पे हमें पता है कि यहाँ पे पानी आ जाएगा, अरे पानी में बह जाएगा, जिसके बारे में पता हो वो बता दिया हो माहिरीन ने कि कुछ अरसे में यह दरिया इसके ऊपर चढ़ जाएगा और ये पानी के नीचे चली जाएगी जमीन, हम कभी नहीं वहां घर बनाएंगे। रब्बे कायनात, सच्चों का सच्चा, जिससे ज्यादा सच्ची किसी की बात नहीं हो सकती, वो फरमा रहा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाना। फिर भी हम इस खुशफहमी में कि जो कुछ मेरे पास है उसने बाकी रहना, कितना हम लोगों के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जायदादों के झगड़े हैं, कहीं केस चल रहे हैं, कहीं भाई भाई से बात नहीं करता, किस लिए? इन्होंने खा गए, ये इन्होंने ले लिया, इन्होंने लूट लिया, इसने मुझे ये नहीं दिया, इसने मुझसे बात नहीं की, इसने मुझे सलाम नहीं किया, इसने मुझे बुलाया नहीं, इसने मुझे ऐसे कर दिया, सभी कुछ तो खत्म हो जाना। जब खत्म हो जाता है ना, फिर इंसान हाथ मलता रह जाता है। क्यों नहीं जिंदगी में इंसान इस चीज को मान ले और समझ ले, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएं। इस फॉर्मूले पे अमल करके, एक फॉर्मूला है, अप्लाई कर दें इसको हर चीज पे जो आपके पास है, आप देखेंगे कि आपका उसको देखने का जो एंगल है ना वो ही बदल जाएगा। कोई भी चीज है, घर है, गाड़ियां हैं, कोई भी चीज है, जो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए तो खत्म हो जानी है। कैसा लगता है दिल में? फिर उससे इंसान का दिल डिटैच हो जाता है, वरना दिल उसी में खुबा रहता है, अटैच रहता है, जो ही पता चलता है ना इसने खत्म हो जाना, डिटैच हो जाता है, उसकी कदरों कीमत नहीं होती, फिर उसके पीछे फिर इंसान भागता नहीं, उसका लालच नहीं होता, फिर उस चीज पे नजर लग जाती है जो बाकी रहने वाला है, और वो है जो अल्लाह के पास है। और अल्लाह के पास क्या है? अजरो सवाब, बदला, जन्नत, उसकी रहमत, वो है जो बाकी रहने वाली है। फिर इंसान उसके पीछे भागता है ये अजर मिल जाए, फिर इंसान कहता है इस जवानी को उसके नाम लगा दूं क्योंकि फिर बाकी रहेगी। ये वो ही है जैसे सूरत आसर में अल्लाह ताला ने फरमाया, वल आसर इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान जो है खसारे में, सब इंसान सिवाय उसके जिसने नेक अमल कर दिए, इसी तरह सिवाय वो चीज जो अल्लाह के नाम लगा दी, अगर ये जिंदगी लगा दी तो ये बाकी रह जाएगी, सेव हो जाएगी, ये जवानी लगा दी ये सेव हो जाएगी, ये माल उसके नाम कर दिया वो सेव हो जाएगा, ये घर गाड़ी ये चीजें जो चीज उसके नाम लगा दी, उसके लिए निकाल दी, वो सेव हो जाएगी।
बाकी सब खत्म है, फना हो जाएगा। बात समझ आई है? बात बड़ी गहरी है, इसलिए बड़ी जरूरी है कि हम इस बात को समझ लें। कैसे बाकी रह सकती है वो चीज जो अल्लाह ताला के साथ मंसूब कर दी ना, जो उसको दे दी वो बाकी है, जो अपने पास ही रख ली वो जाया है। ये वक्त अगर उसको दे दिया ना, तो वो भी वक्त भी बाकी रह जाएगा, क्योंकि तो उसका अजर जो मिल जाएगा ना वो वहां पे सेव हो जाएगा, बाकी सारा वक्त जाया, खत्म हो गया, बर्फ की तरह पिघल गया। तो ये सौदा अल्लाह ताला के साथ करना है। सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांच चीजों को गनीमत जानो, पांच से पहले गनीमत जानो मतलब क्या, इनको वैल्यू कर लो, इनको सेव कर लो, इनको बचा लो। बचेंगी कैसे? अल्लाह के नाम लगा दो, क्योंकि ये टेम्परेरी है। पांच को गनीमत जानो कि तुम्हारे पास शुक्र है कि ये है इस वक्त, तो इस वक्त इनको काम में लगा लो। किसको? जवानी को, बुढ़ापे से पहले, क्योंकि सदा जवानी नहीं रहनी, बुढ़ापा आ जाना। चाहे आप कितनी भी ट्रीटमेंट्स करा लें, स्किन अपलिफ्ट करा लें, पता नहीं क्या क्या चीजें आज जवान रहने के लिए, बुढ़ापा फिर भी आ जाना। इस जवानी को जवाल है, क्योंकि मा अंदकुम यन्फदु, जो आपके पास है वो खत्म हो जाएगा, मगर जिन्होंने अपनी जवानियां अल्लाह के लिए लगा दी उनकी जवानियां अमर हो गई। हम सोचते हैं जवानी तो दीवानी होती है, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए होती है। अभी जवानी के अंदर ही मैं ये अल्लाह अल्लाह करने लगू, जो सर जवानी में इंसान सबसे ज्यादा बहकता है। कहा जवानी जो है हमेशा नहीं तेरी रहनी, बुढ़ापा आ जाना है, इसी पहले इसको गनीमत जान लो, ये जा रही है। फुर्सत को गनीमत जानो मसरूफियत से पहले। फुर्सत जो है, हमें फुर्सत मिलती है हम कहते हैं एंटरटेनमेंट करें। फरमाया फैसा फरगता फनसब, जब फारिग हो जाओ तो फिर गढ़ जाओ, मेहनत करो, रब की तरफ आओ, रुजू करो। कितना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना फरागत का हमारे पास और अल्लाह के यहाँ। फिर आप अपनी खुशहाली को गनीमत जाने फकर से पहले। हमेशा मालदारी नहीं रहेगी, हमेशा माल पास नहीं रहेगा। सेहत को गनीमत जाने बीमारी से पहले, इससे पहले कि एक दिन डॉक्टर कह दे हम जी उसको फलां फलां बीमारी लग गई है, ये स्टेज आ गया है, चले जी अब आगे की तैयारी, अब आपके करने का टाइम हो गया, आगे जाने का टाइम हो गया, चंद महीने के मेहमान है, उस वक्त क्या फायदा। तो सेहत जब है इसको गनीमत जानो, इससे पहले कि कोई बीमारी आ ले। और जिसको लंबी उम्र मिल जाए तो वो तो बीमारियों में घिरता ही जरूर है, और क्या रह जाता है, हमेशा तो नहीं कोई सेहतमंद रहता। एक दिन उठता है तो किसी बीमारी ने आ लिया होता। अच्छा भला कल तक चलता फिरता इंसान, पता ही नहीं चलता उसको कि उसके अंदर कौन सी बीमारी छुपी बैठी है। पता जब चलता है, जब बीमारी टेक ओवर कर लेती है। तो जो तुम्हारे पास है खत्म हो जाना है, ये सेहत है ना ये भी खत्म हो जानी है। और एंड में आके ये बात कि जिंदगी को गनीमत जानो मौत से पहले। ये जिंदगी मिली भी है ना, मौत इसको आ दबोचेगी, अचानक या अचानक नहीं भी आती तो भी, ये तो घुलती जा रही है, ये जिंदगी खत्म हो रही है, क्योंकि जो आपके पास है वो खत्म हो जाना है। इस जिंदगी को ढूंढने भी निकलेंगे तो नहीं मिलेगी, फिर सोचेंगे जिंदगी चली कहाँ गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, कब गुजर भी गई। तो इससे पहले इसको काम में लगा लें, क्योंकि खत्म तो इसने हो ही जाना है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसने खत्म हो जाना है। अकलमंद वही है, खसारे से बचने वाला वही है, जो इसको अल्लाह ताला के रास्ते में लगा दे। वला नजजीन्नल्लज़ीना सबरू, और अलबत्ता हम जरूर जजा देंगे उनको जिन्होंने सबर किया, अजरहुम उनका अजर, बे आसनी मा कानू यामलून, बेहतरीन जो थे वो अमल करते, उनको अल्लाह ताला बेस्ट अजर देगा उनकी सबर का जो वो करते थे, और जरूर देगा उनको अजर। देखिए सबर क्या है, गुनाह से बचने के लिए भी सबर चाहिए और नेकी के रास्ते पे चलने के लिए भी सबर चाहिए। कोई भी इंसान नेकी के रास्ते पर साबित कदम नहीं रह सकता जब तक उसके अंदर सबर ना हो, क्योंकि इंसान एक दिन तो नेकी कर लेगा, अगले दिन सारा वो उसका पैशन और वो जो सारा जोश था वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद कहेगा नहीं जी अब नहीं मेरे से होता। नहीं, इसके लिए सबर, सबर का मतलब क्या, डट जाना, साबित कदम रहना, अपने आप को चलाते रहना, ये भी सबर है। और नेगेटिव रिएक्शन शो करने से अपने आप को बचाना, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह और रसूल की हुक्म के खिलाफ है ये काम, ये नाफरमानी का काम है, इससे खुद को बचाना ये भी सबर है। गुनाह के रास्तों पे जाने से रुक जाना ये सबर से ही होता है। इंसान अपने आप को रोक ले, अपने आप को होल्ड करे कि नहीं ये मैं ना इस रास्ते पे नहीं जाना, ये सबर है। क्या अल्लाह रसूल के हुक्म पे डट जाना ये सबर है। अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल, ये आप ये क्लास ही लेते हैं, ये क्लास लेना ना सबर के बगैर पॉसिबल नहीं है। जब आपने साइन इन किया होगा उस दिन शायद आप बड़े कन्विंस्ड हुए हों, किसी ने आपको कन्विंस कर लिया, बड़ा आपको जोश आ गया, अच्छा अच्छा नहीं नहीं भाई कुरान तो सीखना चाहिए, 4 दिन में जोश ठंडा हो गया, फिर उसके बाद कर नहीं नहीं अच्छा चलो मेरे पास वो काम है, वो काम है क्या करें, अब मेरी भी तो मजबूरी है, चलो उधर चले गए, एक दिन क्लास छोड़ी, दूसरे हफ्ते भी छोड़ दी, तीसरे हफ्ते वैसे ही दिल नहीं किया, चौथे हफ्ते छोड़ सोचा अब तो इतनी क्लासेस मिस हो गई आप छोड़ ही दो, वापस पॉइंट जीरो पे चलेगा। ये है बेसब्री। सबर जो इंसान करता है ना, यानी मुश्किल भी है तब भी चलता रहता है ना, उसको अजर मिलेगा। जाहिर है मुश्किलात आएंगी, हर चीज बेड ऑफ रोजेस नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज ऐसे नहीं मिल जाती कि कोई इतनी इजी हो। कोई भी अच्छी चीज पाने के लिए आप जब रिस्क के हलाल ही कमाने जा रहे हैं उसके लिए भी मेहनत लगती है। आप ऐसा नहीं करते कि 1 घंटा काम किया उसके बाद आपने कहा अब मैं 10 घंटे आराम करूंगी और फिर अब मेरा जब दिल करेगा तो फिर दोबारा काम करूंगी, ऐसे नहीं होता। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ना, पूरा महीना काम करते हैं फिर आपको पे मिलती है। आप कोई भी काम करते हैं उसको शुरू करते हैं तो खत्म करना जरूरी होता है, उसके बगैर आपको उजरत नहीं दी जाती। तो ये जिंदगी भर की एक मेहनत है कि नेकी के रास्ते पर आप जमे रहें और गुनाहों से आप बचते रहें, और इसके लिए सबर चाहिए होता है। ठीक है, तो पता चला कि जिंदगी भी महदूद है, जवानी भी महदूद है, कुव्वतें भी महदूद हैं, सब चीजें लिमिटेड है। कितनी भी आप इन चीजों को यूज कर लें, इनको जमा कर लें, इनके इनको सेव कर लें, फिर भी इन्होंने खत्म हो जाना जो भी हमारे पास है। लिहाजा सबर के साथ अल्लाह के रास्ते के ऊपर चलते रहेंगे, सबर करेंगे, और माहिदों की बात जहां पे आ गई, पीछे की बात उसके साथ रिलेट करें तो माहिदे के पूरा करने के लिए भी तो सबर चाहिए ना। क्या आप कहें कि अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देगा, अगर मैं इस माहिदे को पूरा करने में मुझे नुकसान भी हो रहा है तो अल्लाह के पास मेरे लिए बेहतरीन बदला है इसका, आप सबर करेंगे ही तो वो बदला मिलेगा ना। देखो बदला फौरी नहीं मिल जाएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ये वेट करना ये भी सबर है। ठीक है कि आज मुझे नहीं सामने नजर आ रहा लेकिन मुझे आखिरत में मिलेगा, इसके लिए भी तो सबर चाहिए। कुछ लोग जाते हैं बस वो यहीं पे फौरन सामने मिल जाए, हो सकता है फौरी तौर पे ना मिले, सबर करना पड़ेगा कि एक दिन आएगा मुझे मिलना है, आज मुझे मुश्किल हो रही है मैं सबर करूं। ठीक है, ये बताइए धुलाई हो रही है अंदर की, एक आयत भी काफी है इंसान का अंदर धो देने के लिए। इसके लिए हम बैठते हैं कि हमारी धुलाई हो जाए, गफलत के पर्दे पड़ जाते हैं ना ऊपर, छा जाती है गफलत, डी ट्रैक होने लगता है इंसान, ट्रैक से हटने लगता है, एग्जिट पे जाने लगता है, कुरान वापस ले आता है, ये इसका फायदा है, ये इसको पढ़ने के इसीलिए हमें जरूरत है इसीलिए बार बार हम इन्हीं आयात को पढ़ते जाते हैं। अगर आप तीसरी दफा भी पढ़ रहे हैं, चौथी दफा भी पढ़ रहे हैं, तब भी उतना ही इफेक्टिव है जितना पहली दफा पढ़ने पे था। इसलिए कि कभी भी डिट्रैक हो सकते हैं, कभी भी कदम फिसल सकता है, फिर वापस आ जाओ, फिर ले आता है हमें। फिक्र ना करो, तुम्हारा अजर जाया नहीं जाता, लेकिन सब्र करो ना, थोड़ा सब्र करोगे तुम्हें अल्लाह ताला बहुत अच्छा बदला देगा। अल्लाह ताला के पास अजर है उसका, जो तुम सब्र करते हैं, जो सब्र करने वाले हैं। इन इंसान बेसब्र हो जाता है जिंदगी में, कहता है सब्र करना बड़ा मुश्किल है, आए मेरे से नहीं सब्र होता। हालांकि फरमाया अल्लाह ताला सब्र करने वालों के ही तो साथ है। कोई भी इंसान सब्र के बगैर जन्नत नहीं पा सकता, इसलिए कि हर चीज में ही तो सब्र करना। आप देखिए, नमाज पढ़ने के लिए भी आपको सब्र चाहिए। कैसे कि नमाज 5 दफा पढ़नी है, ऐसे नहीं कर सकते एक दफा पढ़ी उसके बाद नहीं, अब नहीं मुझसे होती। ये सबर, नेकी के हर रास्ते पे जमने में सबर चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ना, ऐसा दौर आएगा कि आप दीन पे चलना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ में अंगारा लेना, आग का अंगारा हाथ में पकड़ना। दीन अजनबी हो जाएगा, लोग कहेंगे ये कैसे पागल से लोग हैं, लोग कहेंगे ये मिसफिट है हमारी सोसाइटी में, आप एक अजूबे से नजर आने लगेंगे लोगों को। आपकी बातें कहेंगे बिल्कुल ही ये तो पागल हो गया, फनेटिक है, ऐसे कहने लगेंगे, अजीब नजरों से देखने लगेंगे। तब क्या चाहिए होगा? सब्र चाहिए होगा दीन पे चलने के लिए। तब जैसे वो है ना कि जिधर वो हवा का रुख उधर को नहीं चल पड़ना, चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की वैसे नहीं चलना कि सारे जिधर को चल रहे हैं हम भी उधर चलने लगे, नहीं, तब सबर चाहिए। तो सबर आसान नहीं होता, लेकिन क्या चीज उसको आसान बनाती है कि इसका अजर बहुत बड़ा है। देखिए अब यहाँ पे वलनजजीयन्ना, मैंने आपको बताया ना कि कितनी ताकीदें हैं इसमें। अलबत्ता लाम ये ताकीद है, नून मुशद्दद ये ताकीद है। हम जरूर, अल्लाह ताला को तो कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो कह दे कि हम जजा देंगे, तो वो तो सच्चा है, वो कह दे तो बस उसकी बात हर्फ आखिर है। लेकिन फिर भी फरमाया हम जरूर बदला देंगे, अलबत्ता हम जरूर। तो फिक्र करने की क्या बात है, कहीं आपका अजर नहीं जाता, जरूर मिलेगा। सबर करके तो देखें, डट के तो देखें अल्लाह के दीन पे, गुनाहों से बच के तो देखें। अल्लाह की नाफरमानी करने का दिल करे तो खुद को रोक के तो देखें, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि सब्र करने वालों को अल्लाह ताला इतना अजर देगा कि बगैर हिसाब किताब के अजर मिलेगा, इतना अजर होगा, गिन गिन के नहीं दिया जाएगा, बगैर हिसाब किताब के, यानी अनलिमिटेड। बगैर हिसाब किताब का मतलब क्या? अनलिमिटेड। कितना बड़ा अजर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि सबर मेरे बंदों के ऊपर मुश्किल है, लेकिन सबर करो तो आप जिस भी पोजीशन में, चाहे कोई गम का पहाड़ टूटा, चाहे कोई परेशानी आई, चाहे खुशहाली के दिन है, चाहे नेकी कर रहे हैं, चाहे गुनाह से बच रहे हैं, हर जगह पे सबर है। तो आप जिस पोजीशन में भी है, सबर की सबको जरूरत होती है। ये नहीं कि सिर्फ जिसके ऊपर गम आया वो ही सबर करेगा, हम क्या सबर करें, हर एक इंसान को सबर की जरूरत है, ठीक है। दीन पे चलने के लिए तो सबर की सबको ही जरूरत है, और दीन पे साबित कदम रहने के लिए, और नेकियों पे चलने के लिए, और गुनाहों से बचने के लिए। तो ये अजर ऐसे ही नहीं मिल जाते। तो ये बस कहते जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, तो जन्नत कौन सी आसान है? ये जन्नत ऐसे ही फ्री में मिल जानी है? तो जिस दिन इंसान देखेगा ना सबर करने वालों का बदला, तो उस दिन कहेगा काश मैं दुनिया में इतना सबर करता। फिर फरमाया मन आमिला सोलेहन, जो भी अमल करता है नेक, नेक अमल, मिन जकरिन और उनसा, चाहे मर्द है चाहे औरत है, वह मुमिनुन, और वो मुमिन हो, शर्त यह है कि ईमान वाला हो, तो हम क्या करेंगे, उसका बदला क्या होगा? यानी नेकी आप करें, चाहे आप औरत हैं चाहे मर्द हैं, शर्त ये कि आपके पास ईमान होना चाहिए। तो अल्लाह ताला इसका बदला क्या देगा? फलनुहयिन्नहु, बस अलबत्ता जरूर हम उसको जिंदगी देंगे, पाकीजा जिंदगी। और ये कहाँ पे? दुनिया में। यानी हम सोचते हैं ना कि नेकी करेंगे तो आखरत में ये मिलेगा, आखरत में ये मिलेगा। आखरत में तो मिलेगा ही इंशाल्लाह, अल्लाह ताला अजर जाया नहीं करता। अगर ईमान के साथ, नेक नियति के साथ, अखलाक्स के साथ किया हो, अल्लाह ताला अजर नहीं जाया करता। लेकिन दुनिया में भी इंसान उस नेकी का बदला पाता है। जैसे पुराने लोग, शायद उस वक्त इतनी दीन की तो समझ नहीं होती थी, लेकिन एक मुहावरा बोला जाता था ना, कर भला सो हो भला, है ना? सुना हुआ होगा आपने, कर भला सो हो भला। आप भला करेंगे, अल्लाह आपको इस दुनिया में भी भला देगा। फिर हम वो कहते थे कि किसी के लिए गड़ा खोदोगे, खुद उसके अंदर गिरोगे। यानी आप बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। जो इंसान नेकी करता है ना, किसी और के साथ आप सोचते हैं कि हम कोई नेक अमल कर रहे हैं, पता नहीं किसी पे एहसान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं, इंसान अपने साथ भला करता है। सबसे बड़ी भलाई वो अपने साथ कर रहा है। दूसरे को तो जो बात की बात है, लेकिन अपने साथ आप भला कर रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला इस दुनिया में भी आपको पाकीज़ा जिंदगी देगा। पाकीज़ा जिंदगी कौन सी होती है? ठीक है, वो भी सही है कि रिज़्क़ हलाल आपको मिलता है, आपको रिज़्क़ अल्लाह ताला अता फरमाएगा। लेकिन इससे मुराद सिर्फ माल नहीं है कि आप हयात तय्यबा से मुराद समझ ले कि माल आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग बहुत नेकियां करने वाले हैं, लेकिन वो मालदार नहीं होते। तो अब आप कहेंगे इनको तो हयात तय्यबा ही नहीं मिली। तो हयात तय्यबा का मतलब क्या है? कनात वाली जिंदगी, एक ये माना है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारी माल की अमीरी नहीं है बल्कि नफ्स की अमीरी है। यानी नफ्स अमीर हो जाता है, कनात आ जाती है, जो उसके पास है उसमें कंटेंट होता है। ठीक है, तो माल भी हो सकता है, रिस्क हलाल भी हो सकता है हयात तय्यबा। और इसके अलावा क्या है? बहुत सारी इससे चीजें मुराद ली गई। नेकियां करनी आसान हो जाती, ये भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत होती है। ये भी हयात तय्यबा है कि अल्लाह ताला नेकी को आसान कर दे। और है ना सूरह ताहा में गालिबन के जो अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह मोड़ता है, अल्लाह ताला उसकी मईशत तंग कर देता, उसकी जिंदगी को तंग कर देता, घुट जाती है उसकी जिंदगी, हयात तय्यबा नहीं रहती फिर। तो नेकी का फायदा क्या है? इंसान एक और हयात तय्यबा का से मुराद ली गई खुशबख्ती, सआदत। ठीक है, अल्लाह की पहचान वाली जिंदगी, तमानियत, फारिगुल बाली। तमानियत भी देखे ना, ये जो इत्मीनान और सुकून है ना, ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि बाज दफा अमीरों को भी नहीं मिलती है। जिनके पास माल बहुत होता है ना, उनको भी नहीं ये मिलती। अगर माल से सुकून मिल सकता होता तो अमीर लोग कभी खुदकुशियां ना करते। हालांकि आप देखें, सबसे ज्यादा खुदकुशियां ही ये बड़े बड़े, जिनको आप सेलिब्रिटीज कहते हैं, बड़े मशहूर लोग, कभी वो ड्रग्स ले रहे होते हैं सुकून लेने के लिए, कभी वो कुछ करते हैं, कभी एक चीज, कभी सोने के लिए। अक्सरियत जैसे ये नींद की जो गोलियां हैं, ये बताएं, आज तक हमने किसी गरीब को खाते देखी है? उसको वैसे ही नींद आ जाती है, उसको नींद की गोली खाने की जरूरत है। ये अमीरों की चीज है, अमीरों को नींद नहीं आती क्योंकि चैन ही नहीं है। और गरीब जो है वो मीठी नींद सो रहा है, इससे क्या आपको पता नहीं चलता कि सुकून पैसों में नहीं है, सुकून है वो चीज जो इंसान को नेक अमल से मिलती है। इसीलिए आप देखिए, बाज दफा ये जो अमीर अमीर लोग हैं, ये बड़ा चैरिटी वर्क कर रहे होते हैं। किस लिए? क्यों चैरिटी वर्क कर रहे होते हैं? उनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है? वैसे चाहे वो कुछ ना करें, लेकिन वो इसलिए, कहीं किसी को खाना खिलाने का कर देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, इसलिए कि सुकून फिर भी इन्हीं चीजों में, नेकी में। नेकी सुकून का बाइस बनती है। हयात तय्यबा कौन सी है? सुकून वाली जिंदगी, इत्मीनान वाली जिंदगी, और ये सुकून ही दौलत है, दौलत है। जिसको ये सुकून मिल गया उसकी ये जिंदगी जन्नत बन गई, इस दुनिया की जिंदगी भी। और मैंने जैसे आपको कहा कि माल से अगर ये जन्नत बनती होती तो ये बेचारे क्यों खुदकुशी कर रहे थे, क्यों नींद की गोलियां खा रहे होते, क्यों ये ड्रग्स पे होते। तो सुकून वो दौलत है जो मिलती है अमले साले से। यहां पे अब फर्स्ट पार्ट को देख लें, हयाते तैयबा की बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब आप देखें ये किस तरह मिलेगी, मन आमिला सालेहन, जो नेकी करेगा। नेकी में भी बहुत बहुत वर्सटाइल है नेकी, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है नेकी का। नेकी हर तरह की नेकी, इबादत है, इंसानों के हकूक हैं, इंसानियत के साथ नेकी करना है, अल्लाह ताला के दीन पे चलना है, ये सारे साले अमल हैं। तो बहुत सारे इसके शेड्स हैं, ठीक है। गुनाहों से बचना भी नेकी है। तो जो भी नेक काम करेगा ना, चाहे वो मर्द हो या औरत, अब यहां से आपने देख लिया कि इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मर्द औरत का। जो ये कहते हैं ना कि इस्लाम ने औरत को हकूक नहीं दिए, ये नहीं किया, देखिए अगर कोई औरत के साथ ज्यादती होती तो फिर ये बात होती कि औरत नेकी करेगी तो उसको तो हाफ अजर मिलेगा, मर्द नेकी करेगा तो उसको मसलन है कि 10 नेकियां मिलेंगी, औरत करेगी तो उसको 5 मिलेंगी, क्योंकि वो औरत है। तो इसे तब मैं कहती कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो गई औरत के साथ। मगर मर्द नमाज पढ़े तब भी उतना ही अजर है, औरत पढ़ेगी तब भी उतना ही, मर्द सदका करे तब भी उतना अजर है, औरत करेगी तब भी उतना अजर है। मर्द रोजा रखता है वो ही अजर है, औरत का भी वही अजर है। तस्बीह एक भी आप सुबहान अल्लाह कहें, जितना आपको अजर मिलेगा उतना ही किसी मर्द को मिलेगा दुनिया में। हाँ ये खुद डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और इस्लाम के ऊपर नाम लगाते हैं। औरतों की पे में और मर्दों की पे में फर्क होता है, देख लें आप जाके सर्वे कर लें अक्सर जगह। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ जहां पे औरत के अहकाम आते हैं, अब आप पर्दे को समझ लें, उनको नहीं पर्दे का हुक्म दिया, हमें क्यों दिया गया भाई। आप खूबसूरत है, जो खूबसूरत चीज है उसको ही छुपाने की जरूरत है, जो कीमती चीज है उसको छुपाने की जरूरत है ना। तो वो उनका रोल चूंकि डिफरेंट है, उसने कोई और काम करना है, दूसरे ने कोई और काम करना है, जिनसी फर्क है ना, तो उसके मुताबिक उसको हुक्म दिया गया। जैसे औरत के जिसमें वो महफूज रहे, मर्द को उसके मुताबिक हुक्म दिया गया। उसमें आप इसलिए नहीं कंपैरिजन कर सकते कि दोनों के रोल्स ही डिफरेंट है, दोनों के फील्ड ऑफ वर्क डिफरेंट है। एक का फील्ड ऑफ वर्क घर है, एक का फील्ड ऑफ वर्क बाहर है, उस तरह के उसको हुक्म है, औरत को उस तरह के हुक्म है, ठीक है। तो इस तरह की बातों में ना आया करें, जब आपको कोई ये प्रोपेगेंडा करते हैं, जो जिनको इल्म नहीं होता, जिन्होंने कभी कुरान पढ़ा नहीं होता, वो ऐसी बातें दीन के ऊपर करने लगते हैं कि हैरत होती है कितना आपने पढ़ा है, ये कितनी आपको समझ है। ना समझ है, ना पता है, ना आगे पीछे का कुछ नहीं पता दीन का, लेकिन फौरन बस खड़े हो जाते हैं ये कहने के लिए जी इस्लाम ने हमारे ऊपर बड़ी ज्यादती कर दी। अब आप देखें यहाँ पे कहा गया मर्द हो या औरत हो, कोई फर्क नहीं रखा, जो भी साले अमल करेगा, मगर शर्त क्या है, उसके पास ईमान होना चाहिए। अगर ईमान नहीं है ना, तो फिर कोई भी नेकी कर ले, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लें, यतीम खाने बना लें, चैरिटी वर्क कर लें, इंसानियत की बड़ी खिदमतें हो रही हैं, लेकिन वो जीरो है उसको। यानी जिसके पास ईमान नहीं है, यानी कोई काफिर है, कोई मुशरिक है, कोई भी, वो जब नेकी करता है ना, अल्लाह ताला उसको दुनिया में इसका बदला दे देता है, दुनिया में ही उसका हिसाब किताब साफ हो जाता है। यानी दुनिया में अल्लाह ताला उसको इतना नवाज देगा, इतना कुछ दे देगा कि जब वो मरेगा तो उसके पास जीरो नेकी बच जाएगी, ठीक है। फिर आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं है, आखिरत के लिए उसने किया भी नहीं था, उसने तो दुनिया में सुकून पाने के लिए किया था ना। कि वो दुनिया में मुझे बड़ा सुकून मिलता है ये करके, मुझे बड़ी खिदमत करके सुकून है, तो ठीक है, दुनिया में आपको ये थोड़ी देर के लिए सुकून भी मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए आपको दुनिया के अंदर पैसा भी मिल जाएगा, उसके अंदर बड़ी फरावानी मिल जाएगी, आपको तरक्कियां मिल जाएंगी। आप देखिए आज दुनिया के अंदर काफिर कितनी तरक्की कर रहे हैं, लोग इसी से समझ लेते हैं कि ये हक पे हैं, इसलिए कि देखो ये कितनी तरक्की कर रहे हैं। हालांकि आपको क्या नहीं पता, काफिर को अल्लाह ने दुनिया में ही नवाज देना, उसको दुनिया में ही सिर्फ दे देना, मोमिन को दुनिया में भी देना और आखरत में भी देना। समझ आई बात? मोमिन को दुनिया में भी मिलेगा। जैसे इमाम इब्ने तैमिया जब जेल जाने लगे तो उन्होंने फरमाया मेरी जन्नत मेरे दिल में, वो तो मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता। तो वो जो कंटेंटमेंट, जो अल्लाह की मोहब्बत, जो सुकून, जो नेकी का शौक, जो जो ये सारी चीजें हैं, वो एक मोमिन को ही मिलती है। जो नेकी करना आसान हो जाना, जो अल्लाह की पहचान वाली जिंदगी, ये दुनिया की जन्नत है। तो ये उनको क्या पता, वो क्या जाने। ठीक है, तो अल्लाह ताला उनको दे देता है दुनिया में। अब देखिए उनकी औलादें पल बढ़ रही हैं, उनको करियर्स में बड़ी तरक्कियां मिल रही हैं, कभी भी ये देख के हसरतें ना करें यार इनको तो सारा कुछ मिल गया, उसको देना ही अल्लाह ने दुनिया में है। ठीक है, तो ईमान के साथ जो नेकी की जाएगी वही अल्लाह के हाँ कबूल है, ईमान के बगैर जो नेकी है वो कबूल नहीं है, चाहे वो कितनी बड़ी नेकी नजर आती है। तो कभी इस चीज के ऊपर झगड़े नहीं कि ओ फलाने तो इतना काम किया है, उसने देखो कितना बड़े इंसानियत की खिदमत के काम किए हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो कयामत के दिन जन्नत में ना जाए। देखिए उसके पास ईमान ही नहीं है। ऐसे ही आपके पास पासपोर्ट भी है, टिकट भी है, सब कुछ है, आप किसी कंट्री में एंटर होना चाहते हैं, आपके पास उसका वीजा ही नहीं है, वीजे के बगैर तो नहीं जाने देंगे, आपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो आपको वो नहीं जाने देंगे, वीजा रिक्वायर्ड है। इस तरह ईमान रिक्वायर्ड है जन्नत में जाने के लिए, ईमान के साथ आप नेकी लाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, ईमान के बगैर कोई नेकी कबूल नहीं, वीजे के बगैर चाहे पासपोर्ट ले आए, टिकट ले आए, पैसे ले आए, कुछ भी फायदा नहीं। दुनिया में लोगों ने कोई क्राइटेरिया रखा होता है कहीं एंटर होने का, अल्लाह की जन्नत में जाने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होगा क्या? हमें हमारी मर्जियों से चलेगा कि हम जिसको चाहेंगे वो जन्नत में जाए? तो इसलिए इस पे झगड़ा ना किया करें, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए ईमान है तो जन्नत मिलेगी, ईमान नहीं तो कोई जन्नत नहीं है, चाहे ढेरों ने किया ले। ठीक है, ईमान, ईमान के साथ सवाले अमल, इसीलिए यहाँ पे कहा गया ईमान आमन व आमिल सवालेहात है ना, उसी को उस तरह से बताया गया कि मन आमिला सवालेहन मिंजा करे ना उनसा वह मोमिन, इसमें भी ईमान और साले अमल की बात है, ईमान और साले अमल होगा तो फिर दुनिया की जिंदगी भी अल्लाह ताला पुरसकून कर देता है, पाकीज़ा जिंदगी मिलती है। ठीक है, और ये देखें कि इसके अलावा क्या शरायत है किसी भी नेकी को कबूल होने की, ईमान शर्त है, सेकेंडली वो नेकी इखलास के साथ फील्ड होनी चाहिए, यानी जब आप वो नेकी कर रहे हैं ना तो आपको ये ख्याल दिल में होना चाहिए कि मैंने अपने अल्लाह को खुश करना है, मेरा अल्लाह खुश हो जाए मेरी इस बात से, ये आपका मोटिव होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मोटिव ये नहीं है तो तब भी वो अमल कबूल नहीं है, चाहे ईमान है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया, यानी अगर अल्लाह की रजा के लिए नहीं, अल्लाह की खुशी के लिए नहीं कर रहे, लोगों को खुश करने के लिए कर रहे, दिखावा है ना, शो ऑफ है, लोग देखें जी मेरी तारीफें करें, बड़ी नेक है, देखो बड़ी पर्देदार है, देखो देखो तो अबाया हिजाब भी लेती है, ये तो ऐसे करते, तो अगर ये नीयत है वो कि मैंने नेक कहलाना, वो सब जाया, वो शिर्क है, बल्कि जाया तो क्या है, शिर्क है। तो एक क्राइटेरिया क्या मैंने आपको बताया, शर्त एक कंडीशन क्या है नेकी का कबूल होने की, ईमान हो, उसके अंडर क्या चीजें आ जाती है, इखलास, यानी अल्लाह की खुशी के लिए, खाली सिर्फ उसको खुश करने के लिए और किसी के लिए नहीं। लोग खुश हो जाते हैं ठीक है, नहीं भी खुश होते कोई मसला नहीं,
लेकिन अल्लाह ताला खुश हो जाए, बस ये होना चाहिए। और इसकी तीसरी बात क्या है कि सुन्नत के मुताबिक हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं और कहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ये कोई बुराई तो नहीं है ना, क्या फर्क पड़ गया अगर मैंने मसलन मिसाल के तौर पे कोई कहे कि अगर मैंने ये जोहर की 4 रकत फर्ज की बजाय 8 रकत पढ़ ली तो ज्यादा ही की है ना, कम तो नहीं ना की, तो फिर आपको क्या, कोई इसमें हरज क्या है? हरज है इसमें, इसलिए कि आपने जो तरीका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे हट के काम किया। देखना ये जरूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो काम किया कभी या नहीं किया। अब उसमें लोग लेके खड़े हो जाते हैं, लो वो तो जहाजों में भी नहीं बैठे, उन्होंने तो घड़ी भी नहीं बांधी, वो ना तो ये शीशे के ग्लास में नहीं पिया, उन्होंने तो ऐसे नहीं किया, तो क्या वो, देखिए जो दुनियावी काम है उसके अंदर नहीं, जो दीन का सवाब का काम समझ के आप कर रहे हैं उसमें देखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका। अब वो तो उन्होंने कंप्यूटर भी नहीं यूज किए, अब हम कहें कंप्यूटर आप क्यों यूज कर रहे हैं, माइक क्यों यूज कर रहे हैं, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था। तो ये दुनियावी चीजें हैं, दुनियावी चीजों में आप ये नहीं देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या नहीं किया, उसमें आप देखेंगे कि आपने मना किया या नहीं। अगर मना नहीं किया तो फिर आप यूज कर सकते हैं, अगर मना किया दुनिया की चीजों में कोई चीज यूज करने से तब आप उससे रुकेंगे, अदरवाइज दुनिया की सारी चीजें आपके लिए ओपन है, आपके लिए बनाई गई है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया सब चीजें मैंने तुम्हारे लिए पैदा की हैं दुनिया में, ठीक है, मगर जब दीन का काम आ जाएगा तब आपने देखना है कि इसका सबूत मिलता है या नहीं। लोग पूछते हैं मना कहाँ किया गया, नहीं मना की नहीं आपने दलील देखनी, आपने देखनी है कि कहाँ पे इसकी एग्जाम्पल मिलती है, कहाँ पे इसका अप्रूवल मिलता है, अप्रूव होगी तो आप वो दीन का काम करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। वलनज़ीयन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और अलबत्ता हम जरूर जजा देंगे उनको अजर उनका आसन बेहतरीन तरीके के साथ जो वो अमल करते थे, यानी इसका बेहतरीन अजर मिलेगा वहां पे, क्या अजर मिलेगा, जन्नत जो इंसान के अमल से भी बढ़ के है, जो कभी खत्म ना होने वाली। देखें जो भी अमल आपने किया ना, क्या 60 साल की जिंदगी, 70-80 साल कितनी जिंदगी होगी उसमें किया, लेकिन अजर 70-80 साल का नहीं मिलेगा, अजर वो मिलेगा जो कि कभी ना खत्म होने वाला, तो बेहतर है, बेहतरीन अजर है, ऐसा तो कोई भी नहीं दे नहीं सकता रिवॉर्ड जो अल्लाह ताला देगा उस दिन। फिर जो नेकी है उसमें कई कमियां भी हैं, कई कुताहियां रह जाती हैं, कई शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो अजर देगा वो बेस्ट है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। हयात तैयबा से बाज ने जन्नत की जिंदगी भी मुराद ली है कि जन्नत की जिंदगी उसको मिलेगी, मगर ज्यादा राजे यही है कि ये दुनिया की जिंदगी है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि अगर दिल का सुकून पाना है तो क्या करना है, जितनी नेकियां करेंगे उतनी हयात तैयबा मिलती जाएगी, अल्लाह ताला हम सबको हयात तैयबा अता फरमा दे। तो हयात तैयबा मांगे भी और नेकियां में आगे भी बढ़े, ये ना कहें लो मैं ही रह गई हूं ये करने को, मैं ही सारी नेकी करूं, कोई कोई कुछ और भी, कोई और भी कर ले, ठीक है। तो हयात तैयबा दुनिया में भी मिलेगी, बरजख में भी पुरसकून, और हशर में भी। तो जिसको भी यहाँ पे सुकून मिल गया समझ ले हयात तैयबा मिल गई उसको। मोमिन देखें उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है ना, यहाँ पे भी हयात तैयबा वहां पे भी हयात तैयबा, सुभान अल्लाह। फाइजा قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, बस जब तुम कुरान पढ़ो ना, यानी कुरान पढ़ने लगे आप, तो क्या करें, एक काम है जो आपको अल्लाह ताला ने ताकीद की है कि ये काम कर लिया करो, क्या, पनाह मांग लो अल्लाह की, किससे, शैतान मर्दूद से। पनाह कब ली जाती है, जब इंसान खतरे में होता है तो वो किसी स्ट्रोंग के पास पनाह के लिए चला जाता है कि ये मुझे बचा ले,
किसी खतरे से, जो भी खतरा है। अब यहां पे खतरा कौन है? शैतान। शैतान कैसे खतरा है? ना वो आपको मारता है, ना पीटता है, ना कुछ करता है। क्या करता है फिर? वो वसवसे डालता है, वसवास इंसान को डिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वो तरह तरह के, आप देखिए आप क्लास में बैठे हैं, कभी कोई ख्याल आ रहा है, कभी कोई ख्याल आ रहा है, कभी बाबा वो चैट में चले जाते हैं, मुझसे टेक्सटिंग शुरू कर देते हैं, पता ही नहीं 5-10 मिनट की टॉक खत्म भी हो गई, आप वो कहीं और ही पहुंचे हुए थे। तो ये क्या, किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से। इसलिए दिल से जब भी कुरान की मजलिस में बैठने लगे, कुरान पढ़ने लगे, तो कहें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ, तेरी पनाह लेती हूँ। किससे? इस शैतान मरदूद से जो पीछे पड़ा हुआ है। और खास तौर पे यहाँ पे किस वक्त कहा गया? बाकी कामों में भी जो नेकी का कोई काम है, जैसे आप नमाज में जब किरात शुरू करते हैं, जब आप कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, जब सूरह फातिहा शुरू करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले किरात सूरह फातिहा से पहले ही क्या फरमा देते थे, क्या कहते थे? आउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिन शैतान रजीम मिन हमज़ीही व नफ़खीही व नफ़थिही। क्या मतलब? मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जो सुनने वाला है, समी है, अलीम है, जानने वाला है। किससे? शैतान मरदूद से, उसके शर से, मिन हमजी ही, उसके खतरे से, व नफ ही, और उसकी फूकों से, व नफ ही, और उसके वसवास से। वो फूके मारता है ना दिल पे अपनी थूथनी रख के, वो जिस तरह पिग की होती है, इस तरह वो उसकी थूथनी होती है रख के, और उससे फूके मारता है दिल पे, वसवसे डालता है। तो जो इंसान कुरान की तरफ आने लगता है, ये शैतान मरदूद इसको छोड़ता नहीं। अब देखिए खास तौर पे, अब बाकी जगह पे आप नमाज में भी जब आप कुरान पढ़ने लगते हैं तब भी यही उसके हाल। तो इसको याद कर लें इस दुआ को, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में यही, यानी कुरान पढ़ने से पहले नमाज में यही दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाह ताला की पनाह में आ जाया करते थे। हमें कितनी ज्यादा जरूरत है कि हम अल्लाह ताला की पनाह पकड़ लें, उसकी पनाह में आ जाए, क्योंकि जो कुरान है ना, इसके पीछे पड़ा हुआ है शैतान। क्यों? इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इसलिए कि जो इंसान कुरान से जुड़ जाए, वो बस समझ ले जन्नत का रास्ता उसने पकड़ लिया, उसको जन्नत का रास्ता पता चल गया, वो जन्नत के रास्ते पे चलना शुरू हो गया। पर इस मरदूद ने अल्लाह ताला से ये कहा था कि मैं सबको, बनी आदम यानी आदम की सारी औलाद को जहन्नुम में ले जाऊंगा, मैं अपने पीछे इनको लेकर जाऊंगा जहन्नुम में। तो वो तो नहीं चाहता कि आपको जन्नत का रास्ता पता चले। ये कुरान जन्नत का रास्ता है। हाँ, उस पे चलना या नहीं चलना वो आपका अपना फेल है, ठीक है? अब आप इस पे, कोई लोग कहते हैं उसका क्या फायदा कुरान पढ़ने का है? भाई तो कुरान तो आपको रास्ता दिखा रहा है ना, हिदायत है, हिदायत का पैगाम है, आपको रास्ता दिखाता है। अब आगे कोई उसको पढ़ के भी नहीं चल रहा, तो इसके अंदर कुरान का तो कसूर नहीं है, ना कुरान की क्लासेस का कसूर है। और कोई हो सकता है वो बिल्कुल ही डी ट्रैक हो जाता, कोई हो सकता है बिल्कुल ही भटक जाता, लेकिन चलो थोड़ा बहुत जो भी वो कर रहा है, वो इस कुरान की बदौलत कर रहा है, इसके समझने की वजह से, इसको सीखने की वजह से कर रहा है, उस चीज को तो अप्रिशिएट कर ले। फौरन ताना दे देंगे, ऐसे लगता है कि जैसे बस कुरान की तरफ कोई आ गया ना, इसको पैगंबर बन जाना चाहिए। नहीं, वो भी इंसान ही है, वो पता नहीं अपनी तरफ से कितनी एफर्ट कर रहा हो, कितनी कोशिश कर रहा हो। मत किसी को ताना दिया करे, क्या हो गया इसको, देखो ये कुरान वाले तो ऐसे, कुरान वाले तो वैसे, कुरान वाले, क्या फायदा इसको कुरान पढ़ने का? फायदा है, और जरूर फायदा है, और हो सकता है आज ना फायदा हो, कल हो जाए, कल ना हो परसों हो जाए, और हो सकता है जो आज वो थोड़ा बहुत कर रहा है वो भी इसकी वजह से है, हो सकता है वो वर्स्ट पे नहीं चला गया इसलिए कि कुरान ने उसको थामा। तो कभी इसको बिलिटल ना करें, इसको हकीर ना समझे, इसके पढ़ने को, इसके सीखने को बेफायदा ना समझे, और लोगों को इस पे ताने ना दे। तो जब कुरान की तरफ इंसान आता है ना, तो शैतान उसको इतने वसवसे डालता है। आप देखें ना, खुद सोचें कि ये ऐसा क्यों है कि जब भी आप किसी को कुरान की तरफ बुलाते हैं, तो वो कहता है नहीं जी मेरे काम बहुत है, मेरे पास टाइम नहीं है जी, क्या करें, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मेरी तो जिंदगी इतनी मसरूफ है। ये कौन डालता है? या उस वक्त आपकी बात से कन्विंस हो भी जाए, फिर घर जाके फिर उसको लगता है मैं तो फंसी गई, नहीं मैं कमिटमेंट नहीं कर सकती, बस इस तरह से है कि कमिटमेंट नहीं कर सकती का मतलब ये है कि कमिटेड नहीं हो सकती। एक्चुअली कमिटमेंट इज कमिटेड होना कि आप लग के करेंगे ये काम, नहीं 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 ये नहीं मैं कर सकती। तो जॉब तो आप बड़ी कमिटेड होके करते हैं, घर के काम भी कमिटेड होके करते हैं, और भी जो भी आपके काम है बड़ी कमिटमेंट है, आप बिल देते हैं, आप टैक्स देते हैं, कमिटेड हैं या नहीं? हर महीने के बाद बिल देते हैं ना, हर साल में टैक्स देते हैं ना, आप घर के काम भी रोज करते हैं ना, आप जॉब भी रोज जाते हैं ना, क्यों नहीं आप जॉब वालों को जाके कह देते जी मैं आप कमिटमेंट नहीं कर सकती, जब दिल करेगा आऊंगी, जब दिल करेगा नहीं आऊंगी। ये तो कोई भी आपको हायर नहीं करेगा। कुरान के बारे में ऐसा क्यों है कि हम कमिटमेंट से डरते हैं? क्या कोई आपको पकड़ के कोई बांध के रख रहा है? क्या क्या इतनी मुश्किल हो रही है इसमें कि अक्सर लोगों की जुबान से ये हमने कमिटमेंट नहीं करनी, यानी वो तो अपने आप को इधर बांधना ही नहीं चाहते, टिक के काम करना ही नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि शैतान के वसवास है, शैतान इतने कामों को हावी कर देता है दिमाग पे इंसान के, वो भी काम है वो भी काम है, उसको इतना खौफजदा करता है कि अगर तूने कुरान शुरू कर दिया ना तेरे तो सारे ही काम रह जाने। ऐसे लगता है जैसे कुरान ना पढ़ना हो गया, दुनिया से ये हट जाएगा और उसको बस पता नहीं किसी और ही दुनिया में चले जाना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने लोग कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं या उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने घर भी चला रहे हैं, अपने बच्चे भी देख रहे हैं, अपनी जॉब भी कर रहे हैं, अपने सब कुछ कर रहे हैं, वो भी खा पी रहे हैं, हवा नहीं खाते वो भी खाना खाते हैं, वो भी घरों में रहते हैं, वो भी आपकी तरह के इंसान ही है। लेकिन शैतान ऐसे वसवसे डालता है, वो ऐसी बातें इंसान को करता है कि बंदा खौफजदा इतना ज्यादा हो जाता है, उसको लगता है कि कुरान मेरा सारा ही टाइम खा जाएगा, वो मेरी जिंदगी में कोई टाइम ही नहीं बचेगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूंगी। ये कहां से ख्याल आते हैं? ये कहां से ये खौफजदा करता है लोगों को? ये वसवसे किधर से आए? ये उसकी तरफ से आए जो बिन देखा अनदेखा अनसीन आपका एक दुश्मन है, जिसको आप देख नहीं सकते। अब अनसीन को से बचने का क्या तरीका? जब हमारे सामने ही नहीं है तो हम उससे कैसे मुकाबला करें? उससे सिर्फ एक बात से आप बच सकते हैं कि आप अल्लाह की पनाह ले लें, बस, वरना नहीं ये आपको छोड़ेगा, वरना ये कोई इंसान इससे बच सकता ही नहीं। को जाहिर है जिसको आप देख ही नहीं सकते उससे बचेंगे कैसे? ये तो पीछे पड़ा हुआ और नॉन स्टॉप इंसान के पीछे लगा रहता है। आप आ भी जाएंगे ना तब भी आपको वसवसे डाल डाल के आपको इससे हटाने की कोशिश करें। देखा कुरान पढ़ रहे थे ना तो ये हुआ, देखा कुरान की वजह से ये हुआ। तो कुरान का तो सबसे ज्यादा ये दुश्मन है। ठीक है, आप और चीजों के अंदर भी औजु बिल्ला पढ़ सकते हैं, तो आप किसी गुनाह है, कोई गुनाह का ख्याल आया है तो फौरन आपने कहा औजु बिल्ला मिन शैतान रजीम, आपको कोई ऐसी चीज लगता है कि शैतान मेरे मुझे ये वसवास डाल रहा है, नमाज में कोई वसवसा आ रहा है, तो आप औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम पर पढ़ के थुतकारे बाएं तरफ, आप कोई ऐसी चीज होती तो आप औज़ु बिल्लाह पढ़ सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे खास तौर पे कुरान की बात आई है और इससे आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सी चीज है जिसके पीछे वो सबसे ज्यादा पड़ा होता। कुरान उसको पता है कि इसने समझ लिया ना तो बस फिर इसकी जिंदगी बदल जानी है, ये इसके दिल पे असर कर देगा, फिर इसका अमल बदलना शुरू हो जाएगा, फिर इसको सबसे ज्यादा चाहत ये होगी कि मैं अपने अल्लाह को राजी कर लूं, फिर गुनाहों के मेरे जो ट्रैप हैं उसके अंदर आने से ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, उसमें नहीं आएगा, मेरे आसानी से मेरा शिकार नहीं बनेगा। जब कुरान से इंसान दूर होता है ना, बड़े आसानी से शैतान का शिकार हो जाता है। कुरान के करीब आते हैं तो मुश्किल होती है उसको फांसना, ऐसे नहीं कि उसका फिर भी वो हट जाता है, हटेगा फिर भी नहीं, चाहे आप कितने भी कुरान पढ़ लें, कितने भी नेक हो जाएं, लेकिन सबसे पहले वो ये चाहता है ये कुरान ना खोले। कुरान खोल लिया तो बस ऐसे ऐसे पढ़ ले, इसको समझे ना, फिर वो वार करता है कि इसको समझे ना। तो मैं तो इतना कुरान पढ़ती हूँ, मैंने तो इतने कुरान खत्म कर लिए, मुझे तो जरूरत नहीं कुछ और की, हम तो ऑलरेडी इतनी नेकी करते हैं, वो हमें सारा पता है, हमें और क्या बताएगा कुरान। इस तरह की ये बातें कौन बता रहा है? शैतान, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप समझे। उसको पता है ये की है, उसको पता है ये रास्ता है जन्नत का। ये इस रास्ते को पहचान गया तो दौड़ना ना शुरू हो जाए कहीं इस रास्ते पे, जन्नत में ना पहुंच जाए। वो मर्दूद इसी चीज का तो दुश्मन है। ये जन्नत का रास्ता हमारे लिए खो जाए, हमें पता ही ना चले, गुम कर दे हमारे लिए। फिर अगर समझ भी लिया तो अब अमल के रास्ते में खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा अमल बड़ा मुश्किल है, समझ भी लिया ना बस इतना काफी है, क्लासें लेनी काफी है, इतना तो हम कर रहे हैं। अब अमल आगे इतना मुश्किल बना के दिखा, नहीं अगर अमल किया तो लोग छोड़ देंगे, आए लोग क्या कहेंगे, फिर वो बातें बनाएंगे, फिर वो तुम्हें छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, तुम्हारी दोस्तें तुम्हारे करीब नहीं आएंगी। बस पढ़ लिया इतना ही काफी है, अगर इतने नेक तो हम हो गए। तो ये सारी चीजें ये शैतान की है। तो समझ आ गई आपको? ये पहले खोलने नहीं देता, खोल लिया तो फिर बस ऐसे ऐसे पढ़ लो कि समझ ही ना आए कि क्या पढ़ रहे। और अगर समझ भी लिया, समझने की तरफ आ गए, तो फिर उससे आगे क्या अब अमल ना हो जाए, किसी और को ना बता दे। ठीक है, तो तिलावते कुरान, समझना, इसके ऊपर अमल करना, इसके लिए अल्लाह ताला की मजबूत पनाह में आ जाए ताकि शैतान का वार ना चल सके। वो अल्लाह ताला बचा सकता है, वो ही ताकत रखता है कि हमें इसी शर से महफूज रख सके। हमारे अपने अंदर ताकत नहीं है। इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अल्लदीना आमनू अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अब ये 99 और 100 आयत एक ही बात है। एक में बताया गया कि शैतान का वार किन लोगों पे नहीं चलता, 100 में बताया गया कि शैतान का वार किन में चलता है। ठीक है, किन पे शैतान का वार नहीं चलता? उन लोगों पे जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं, यानी जिसका ईमान अल्लाह पे मजबूत है ना, शैतान उसके ऊपर वसवसे डालेगा। ऐसा नहीं है कि ईमान वालों पे वसवसे नहीं डालता, डालेगा, लेकिन जब उसका भरोसा अल्लाह पे होता है ना, तो ये गलबा नहीं पा सकता उसके ऊपर, पूरे तौर पे हावी नहीं हो सकता उसके ऊपर। जोर लगाता है लेकिन हावी नहीं हो पाता। देखिए, इसका मतलब है कि हमें अपना ईमान मजबूत करने की जरूरत है। जितना भी ईमान मजबूत होगा उतना ही शैतान का गलबा नहीं हो सकेगा। और जितना अल्लाह पे भरोसा कि अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल, अल्लाह ताला पे यकीन कि मेरा रब है मेरे लिए, और आउज़ु बिल्लाह को भी पढ़े तो यकीन के साथ पढ़े, फिर आप देखेंगे कि शैतान का जोर नहीं चलता। जो लोग भी कहते हैं ना हमारे घर में आसेब का साया है, आसरात हैं, ये हैं, उनका इलाज क्या है? यही कुरान है, ये कुरान है। कुरान का जितना पढ़ेंगे ईमान बढ़ेगा, बावजू हो के पूरे यकीन के साथ कहीं से भी कुरान पढ़े, ये शैतान को हमलावर होने से रोक देगा, नुकसान नहीं कर सकेगा। जाए तो, और अल्लाह के ऊपर भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, ये आपको फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो जी, अल्लाह पर भरोसा जो नहीं करता ना, वो हर वक्त परेशान रहता है, गमगीन रहता है, हर वक्त फिक्र में लगा रहता है। जो अल्लाह पे भरोसा कर लेता है उसका दिल पुरसकून हो जाता है। तवक्कुल करना सीखना है हमने, दिल को अल्लाह ताला पे यकीन दिलाना सीखना है। इंसान का दिल थम जाता है जब वो भरोसा कर लेता है अल्लाह ताला। देखें कैसे खुद हमारी काउंसलिंग कर रहा है ना, कि तुम्हें ये शैतान वसवसे डालता है, डराता है और डिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ईमान को मजबूत कर लो, अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा करूं, मैं उसकी पनाह ले लूं,
तो ये खुद ही हार जाएगा। देखिए हजरत उमर को देखिए, ईमान मजबूत था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर जहां से गुजरता है शैतान रास्ता बदल लेता। क्या चीज थी हजरत उमर में, स्ट्रॉन्ग तो थे फिजिकली, लेकिन और क्या चीज थी, ईमान मजबूत था। आप फिजिकली कितने भी कमजोर हैं, अगर आपका ईमान मजबूत है ना, तो इसका वार उतना ही कम चल सकता है जितना ईमान मजबूत करेंगे। ईमान मजबूत भी तो कुरान से होता है ना। तो अब उसका जोर चलता किस पे है, इन्नमा सुल्तानहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु, बेशक उसका जोर उन लोगों पर चलता है जो दोस्ती करते हैं उससे, जो उसको दोस्त बनाते हैं, जो उसकी, यहाँ पे यतवल्लौना से मतलब है जो उसके इताअत करते हैं, उसका कहना सुनते हैं। क्योंकि क़यामत के दिन वो कहेगा कि मेरा को तुम्हारे पर कोई जोर नहीं था, मैं तो सिर्फ वसवसा डालता था और तुमने मेरी बात सुन ली, मैंने तुम्हें दावत दी, तुमने कबूल कर ली। तो जब वो दावत दे, जब वो किसी वसवसे को डाले, इंसान जो मोमिन होता है वो पहचान जाता है कि ये शैतान की तरफ से है। और उसे जब पहचान जाता है तो फिर वो उसकी बात में नहीं आता। ठीक है, वो लदीना हम, और वो लोग भी जिन, और कौन से लोग हैं जिन पे उसका जोर चलता है, जो शिर्क करने वाले होते हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, उनके ऊपर भी उसका जोर चलता है शैतान का। तो शैतान का जोर किन दो पे चलता है, जो उसकी इताअत मान करें, जो उसका, जाहिर है जो उसकी बात मानेंगे उसके ऊपर उसका जोर चलेगा, जो उसकी बात ही नहीं सुनेंगे तो उसके ऊपर कैसे जोर चलाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब ये वसवास आए बार बार, इंसान को एक ही ख्याल आ रहा है, देखो उसने तुम्हारे साथ ऐसे किया, देखा उसने ये कर दिया, देखा उसने वो कर दिया, तो समझ जाए कि ये शैतान की तरफ से, ये जो वसवसा होता है ना, ये बार बार आता है, बार बार पलट पलट के आता है, तो उस पे चलना नहीं है, फिर अऊज़ु बिल्ला पढ़नी है। और अऊज़ु बिल्ला आपसे तो समझ के पढ़नी है ना, जब कुरान खोले तो समझ के पढ़े, अल्लाह मुझे पनाह दे दे इस शैतान से, ताकि बीच में जब आप पढ़ रहे हो तो आपको बहकाए नहीं, ठीक है, आप वसवास ना डाले। और अच्छा, एक दो बातें जो ये पीछे रह गई हयाते तैयबा के हवाले से, वो भी थोड़ी सी आपको बता दूं कि इंसान की जो जिंदगी है, इसमें फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो इंसान जिसको तीन चीजें मिल गई ना, उसको सब कुछ मिल गया, उसको दुनिया की सारी दौलत मिल गई, सारी दौलत सिमट के उसके पास आ गई। वो आगे भी हम उसके ऊपर बात करेंगे एंड की आयात में, मगर हयाते तय्यबा से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोचे कि इंसान को हयाते तय्यबा मिल गई जिस वक्त के उसको फरमाया, उसको पेट पालने का टुकड़ा मुयस्सर हो गया, और अल्लाह उसके दिल को कनात से भर दे, और उसने इस्लाम की राह देख ली, जिसने इस्लाम की राह जिसको दिखा दी गई, जिसको पेट पालने का टुकड़ा मुयस्सर हो गया, यानी पेट भरने के लिए जितना उसको चाहिए था, और अल्लाह ताला ने उसको, उसके दिल को कनात से भर दिया, उसने निजात पा ली, फरमाया उसने निजात पा ली। ये तिर्मिज़ी की हदीस है, ठीक है। तो ये भी हयात-ए-तैयबा है, उसको ये हयात-ए-तैयबा मिल गई।